पृष्ठ संख्या 168, अदम गोंडवी की कविता। अदम गोंडवी की कविता आज की हिंदी कविता की दुनिया में एक अचरज की तरह है। आज की हिंदी कविता के रूप, रंग, दिशा, दृष्टि, बनावट, सजावट और पहुंच की इच्छा से एकदम अलग और बेपरवाह। वह उनकी कविता है जिनके लिए अब कोई कविता नहीं लिखता। वह गांव के गरीबों, दलितों, असहायों, मजदूरों, किसानों और सताई जाति औरतों की कविता है। ऐसी ही कविता को कार्ल मार्क्स ने मनुष्यता की मातृभाषा कहा था। अदम गोंडवी की कविता की भाषा, उसकी बनावट और उसमें मौजूद एहसास से जो अपनापन महसूस करेंगे, उनके लिए वह जागरण की कविता है। लेकिन अभिजनों और अभिजात कवियों के प्रेमियों के लिए अजनबी है, चिढ़ाने और परेशान करने वाली। आदम का कहना है कि वह मानवता का दर्द लिखेंगे, माटी की बुबास लिखेंगे। ऐसी कविता को वह कैसे और क्यों पसंद करेंगे जो माटी की बुबास से अपरिचित हैं या उसके करीब जाने में अपनी तौहीन समझते हैं। जो कविता को अलौकिक वस्तु मानते हैं, वे अदम गोंडवी की कविता की घनघोर लौकिकता से आत्मीयता कैसे अनुभव कर सकते हैं? अदम गोंडवी को पढ़ते हुए मुझे उर्दू का केवल एक शायर याद आता है, वह है नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर की शायरी की भाषा के रूप, उनकी संवेदना और सोच के स्वरूप, उनकी काव्य दृष्टि और आम जन की जिंदगी की मुसीबतों की उनकी गहरी चिंता अदम गोंडवी की भी शायरी में मौजूद है, उसी शिद्दत और शिनाख्त के साथ। मेरी जानकारी में उर्दू और हिंदी में अकेले कवि नज़ीर अकबराबादी ही हैं जिन्होंने मुफलिसी, भूख, रोटी और चपाती पर कविताएं लिखीं। उनके मुफलिसी कविता की शुरुआत इस तरह होती है, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। पृष्ठ संख्या 169, प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, यह दुख वह जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी। और अब उनकी रोटियाँ, कविता का एक हिस्सा देखिए। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की शेर ख्वाहिशें बागो चमन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियाँ। नज़ीर ने एक कविता पेट पर लिखी है तो दूसरी पेट की फिलासफी पर। ऐसी कविताएं वही लिख सकता है जिसने गरीबी, भूख और मजबूरी का मंजर देखा हो और उसका दर्द महसूस किया हो। आइए अब देखें कि अदम गोंडवी नज़ीर की परंपरा के शायर क्यों और कैसे हैं। अदम गोंडवी ने एक गज़ल में लिखा है, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। मेरे सामने अदम गोंडवी की गज़लों और नज़मों की किताब समय से मुठभेड़ है। इसमें करीब 20 शेरों में भूख और भुखमरी मौजूद है। इसके साथ ही अनेक गज़लों में मुफलिसी और बेबसी के हवाल हैं। अदम यह जानते हैं कि भूख जब बेकाबू होती है तब बगावत पैदा होती है, इसलिए वह लिखते हैं, कहीं पर भुखमरी की धूप तीखी हो गई शायद, जो है संगीन के साए की चर्चा इश्तहारों में। अगर आप अदम की जवानी यह जानना चाहते हैं कि जनता को कब और क्यों बगावत करना चाहिए, तो पढ़िए उनकी नज्म हथियार उठा ले। अभी उसके एक हिस्से को देखिए, गर खुद को कोई मुल्क की तकदीर समझ ले, हर शय को अपने ख्वाब की ताबीर समझ ले, अपना बयान बेद की तहरीर समझ ले, जनगण को खानदान की जागीर समझ ले, जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले। अदम भारतीय समाज में फैले विषमता को मिटाकर समता के प्रसार का सपना देखते हैं, इसलिए कहते हैं, पृष्ठ संख्या 170, एक सपना है जिसे साकार करना है तुम्हें, झोपड़ी से राजपथ का रास्ता हमवार हो। अदम की शायरी में गहरी आलोचनात्मक चेतना है। वे जानते हैं कि तर्क कर तनकीद के जज्बे को मर जाती है कौम, इसलिए वह आम लोगों में आलोचना का जज्बा पैदा करना चाहते हैं। उनकी आलोचनात्मक चेतना अमूर्त और हवाई नहीं है, अनुभवजन्य और इतिहास सम्मत है। भारतीय संस्कृति और धर्म के भ्रमों की असलियत सामने लाते हुए वह उत्पीड़ित जनता की आवाज़ बनकर कहते हैं, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां शंबूक वध की आड़ में उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। इसी आलोचनात्मक चेतना का एक और रूप सांप्रदायिकता की राजनीति की चालाकियों को समझने समझाने में प्रकट होता है। अदम कहते हैं, ए अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहाँ से बीच में मस्जिद व मंदिर आ गए। अदम की यह आलोचनात्मक चेतना वर्तमान भारत की अर्थनीति और राजनीति के चरित्र और उसके परिणामों को पहचानती है। उनकी एक गजल के दो शेर पढ़िए, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। जिस राजनीति ने देश की आज़ादी को बेमानी बना दिया है, उसके बारे में अदम सवाल करते हैं और दूसरों से भी सवाल करने को कहते हैं। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। अदम गोंडवी की कविता से यह साबित होता है कि उन्होंने खुद को डी क्लास ही नहीं डी कास्ट भी किया है। इसलिए उन्होंने एक ओर भारत के शोषित पीड़ित जन से तादात्म्य स्थापित किया है, तो दूसरी ओर दलित समुदाय का पक्षधर बनकर पृष्ठ संख्या 171 उनकी भावना और सोच की कविता लिखी है। मुक्तिबोध ने जिस ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की एकता की बात की है, वह अदम गोंडवी की कविता में है। भारत के शोषित पीड़ित जन की जिंदगी से अदम की कविता के कुछ सबूतों की चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब दलित जन के बारे में अदम की कविताओं की बात करना जरूरी है। इस देश के गरीब दलित अब भी भारतीय लोकतंत्र के सच्चे और पूरे नागरिक नहीं हैं, न संस्कृति में और न समाज में। आज भी वह रोज रोज जघन्य ज्यादातियों और अपराधों के शिकार हो रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखकर अदम गोंडवी उनकी ओर से सवाल करते हैं, अंत्यज कोसी पासी हैं हम, क्यों कर भारतवासी हैं हम, अपने को क्यों वेद में खोजे, क्या दर्पण विश्वासी हैं हम, छाया भी छूना ग्रहित है, ऐसे सत्यानासी हैं हम, धर्म के ठेकेदार बताएं किस ग्रह के अधिवासी हैं हम। दलितों की बेबसी, यातना, उत्पीड़न और दमन का साक्षात्कार कराने वाली अदम गोंडवी की एक नज्म है, चमारों की गली। दलितों के दमन की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें जातिगत वर्चस्व के साथ सत्ता का सहयोग किस तरह आतंककारी होता है, यह देखना हो तो इस कविता को पढ़िए। इस कविता को पढ़ते हुए आप महसूस करेंगे कि कवि के मन में दलितों की यातना के प्रति जो विक्षोभ है और उच्च जातियों के अहंकार के विरुद्ध जो घृणा है, उनकी एकता से कविता में अपार प्रभाव उत्पादकता पैदा हुई है। कथा, चित्रमयता और रवानी के योग से कविता जानदार बनी है और असरदार भी। अदम गोंडवी हिंदी के कवियों में केवल धूमिल को याद करते हैं। उन्होंने लिखा है, अदीबों की नई पीढ़ी से मेरी यह गुजारिश है, संजो कर रखें धूमिल की विरासत को करीने से। अदम की काव्य भाषा की वही विशेषताएं हैं जो धूमिल की कविता की भाषा में हैं। वह हैं बयान के अंदाज का बांकपन, साफ गोई, चुटीलापन और व्यंग्य की बेधकता। अदम गोंडवी ने यद्यपि केवल गजलें और नज्में लिखी हैं, लेकिन उन्होंने गजल के रूप में वैसा ही प्रयोग किया है जैसा नज़ीर ने किया था। नज़ीर की गजलों की विशेषताओं का विवेचन करते हुए उर्दू के मशहूर आलोचक कलीमुद्दीन अहमद ने पृष्ठ संख्या 172 लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा शुरू, गजल की विशेषता यह समझी जाती है कि उसमें हर शेर एक दूसरे से असंपृक्त होता है। नज़ीर ने बहुत ही श्रृंखलाबद्ध गजलें लिखी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि नज़ीर उखड़ी उखड़ी बातें करने से घबराते हैं। उन्हें श्रृंखला एवं क्रमबद्ध रचना में विशेष आनंद मिलता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट उर्दू कविता पर एक दृष्टि पृष्ठ 284 ब्रैकेट बंद। यह बात अदम गोंडवी की गजलों के बारे में भी कही जा सकती है। उनकी अनेक गजलों में विचारों की क्रमबद्धता है और विकास भी। उनकी गजलों में जान आती है जिंदगी की वास्तविकताओं के प्रति सुसंबद्ध विचारशीलता से। कलीमुद्दीन अहमद ने नज़ीर के बारे में यह भी लिखा है कि नज़ीर का अस्तित्व ही उर्दू कविता की अपूर्व आलोचना है। कलीमुद्दीन अहमद के इस कथन की मदद से यह कहा जा सकता है कि कवि अदम गोंडवी का हिंदी कविता की दुनिया में होना ही आज की हिंदी कविता की प्रगतिशीलता और जनवाद की तीखी आलोचना है। अदम गोंडवी की कविता अपने समाज और समय के गवाह की कविता है। अदम जानते थे कि गवाह को न कलाबाज होना चाहिए और न कलाकार ही, तभी गवाही सच्ची और सहज हो सकती है। इसीलिए उनकी कविता में न श्रोताओं और पाठकों को भरमाने वाली कलाबाजी है, न अटकाने वाली कलाकारी।